BBC.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
I'm Abhitak, introduced anyway.
I'm Zoya. Friends call me Z.
I'm Manish. My friends call me Doordarshan.
बहुत खराब जोक था।
ये दोनों यानी सलमान खान और कटरीना कैफ फिल्म एक था टाइगर में लापता हुए थे। फिल्म में इंडिया पाकिस्तान की रॉ आईएसआई अभी तक उन्हें ढूंढ रही है।
हमें टाइगर को ढूंढना है और वापस लाना है।
अब देखते हैं कि टाइगर जिंदा है में ये दोनों एजेंसियों ने ढूंढ पाती है या फिर छुपम छुपाई का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। ये मिलेगा या नहीं इसका तो पता नहीं। हाँ, मुझे मिली है इस हफ्ते की कई गर्मा गर्म खबरें। सुनना चाहेंगे? हाँ तो चले मेरे साथ बॉलीवुड के गलियारों में। जी हाँ, मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे को कैसे मिला बेगम जान का रास्ता।
ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान। इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा।
साले घंटा छोड़ेंगे यहाँ।
विद्या बालन ने बेगम जान बनकर कितनी गालियाँ दी। और विवेक ओबराय याद है आपको? तो जानिए कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहे हैं।
रोबत नीरो का कसम, हमारा होटल फुल है।
लेकिन हमें तो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी।
I'm joking! मैं इस होटल का मालिक, मेरा नाम आखिरी पास्ता।
फिल्म हाउसफुल से बॉलीवुड में नया जन्म लेने वाले चंकी पांडे आखिरी पास्ता बनकर लोगों को खूब हंसाते रहे। लेकिन अब वो फिल्म बेगम जान में लोगों को डराने के मूड में है। क्यों चंकी जी, ये कैसे हुआ?
नहीं, जब सुजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया। और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर। लेकिन आई थिंक सुजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में। जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ, और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे। नहीं ना,
उठा नहीं हटवाया तो तार का काम रुक जाए।
कुछ मामलों के लिए बेसरकारी मुलाजिम भी होते हैं।
कबीर, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी। बोलो किसका काम तमाम करवाना है।
बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम।
बेगम जान का जानदार किरदार विद्या बालन निभा रही हैं। विद्या हमेशा से ही मुख्तलिफ रंग के किरदार निभाकर लोगों को चौंकाती रही हैं।
पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमक न लिखा।
एक बार फिर विद्या एक नए रूप में नजर आएंगी। सुना है फिल्म बेगम जान बनकर आपने ढेर सारी गालियाँ दी है।
ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं। सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। When I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूं, because you can't be बेगम जान and be, you know, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती।
ये बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं,
eviction notice लेकर आए हैं।
ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान।
ये मेरा घर है और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का पार्टीशन कर देंगे।
लगता है फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बाद से विवेक ओबराय काम नहीं बल्कि सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। उनके बारे में ना कोई खबर है और ना ही कोई गॉसिप। विवेक जी, कोई नई हिंदी फिल्म साइन की आपने?
अब मैं फिल्म सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, क्रिएटिव प्रोसेस वो कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट कर रही है, और खुद भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। भी साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म मैंने की है विवेकम, तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे हर भाषा में, तो आई वांट टू हिट ऑल 4 लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडस्ट्री, और साथ में हिंदी में भी प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ।
Yeah, I want to speak to Mr. George Bush, American President.
Mr. Bhatti,
धनलक्ष्मी बैंक,
आइए आपको मिलवाता हूँ उससे, मिस्टर भट्टी से।
सर
एक गणपत बजाना काय को बंद किया?
जी वो हैं जिन्होंने जवानी में ही एक बुजुर्ग का किरदार अदा किया और 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की फिल्मों में मुख्तलिफ और बेशुमार किरदारों में नजर आने वाले अदाकार अनुपम खेर 1982 में फिल्म आगमन से हिंदी फिल्मों में आए और 1984 में फिल्म सारांश में 28 साल अनुपम खेर ने एक रिटायर्ड बुजुर्ग का किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया।
कहाँ जा रहे हैं?
मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे?
मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री नाउ।
तो अनुपम जी फिल्मों में कैसे आए?
3 जून 1981 को अपने ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करके मुंबई पहुंचा था बीटी स्टेशन पर और 3 साल मैंने बहुत से सड़कों की खाक छानी, काम ढूंढना, नहीं मिला, लेकिन फाइनली मुझे सारांश मिली और 25 मई 1984 को सारांश रिलीज हुई थी। आज मुझे काम करते हुए 32 साल हो गए हैं, 505 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, 505वीं फिल्म की शूटिंग अभी खत्म की है।
खेर ने कॉमेडी से लेकर विलन के किरदारों के साथ साथ बतौर करेक्टर एक्टर के रूप में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। यूं तो अनुपम खेर ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया लेकिन शाहरुख खान के साथ इनकी कई कामयाब फिल्में रहीं, जिनमें डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और वीर जारा शामिल है। कैसा लगता है इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद?
बहुत ज्यादा, गॉड ने बहुत कुछ दिया मुझे। बॉम्बे में रोज हजारों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए और इस प्रोफेशन में खासकर 0.001% को मौका मिलता है। मैं उन 0.0001% में से एक हूँ। किसने सोचा था? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिमला से, मेरे पिताजी फॉरेस्ट में क्लर्क थे, मैं यहाँ आऊंगा, 30 साल में मैं 480 फिल्में करूंगा। अभी भी 30 साल बाद भी मैं उसी शिद्दत से और उसी ऑनेस्टी से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो भगवान ने तो बहुत दिया है, मैं संतुष्ट हूँ।
अनुपम खेर ने बॉलीवुड के बाहर भी अपनी एक पहचान बनाई। 2002 में बैंडिट लाइक बेकहम और 2004 में प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी फिल्में की।
It's like representing India in cricket, hockey or boxing, etc. When I'm doing a film with Hollywood people or abroad, I think I have to give my best. And that works out well.
Anupam Kher ko फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिले लेकिन पिछले साल हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण का एजाज मिलने के साथ साथ उन पर तंज और तनकीद की बौछार भी हुई और इसे एक सियासी कदम कहा गया। अनुपम खेर की बेगम किरण खेर, जो कि अदाकारा भी हैं, बीजेपी की रुकन पार्लियामान हैं। तो क्या आप सियासत में जाना चाहेंगे?
मुझे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर आई थिंक लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर किसी पॉइंट देश में किसी चीज के चलते अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो लोगों को वो कमेंट कभी कभी एक देशभक्त का नहीं लगता, एक पॉसिबल पॉलिटिशियन का लगता है। इनफैक्ट मेरी ताकत ज्यादा है अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा।
अनुपम खेर जल्दी ही फिल्म नाम शबाना और टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आएंगे।
कुछ भी हो जाए धनी मन।
बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्मों की। इस हफ्ते फिल्म ट्रैप और अब्बास मस्तान की फिल्म मशीन रिलीज हुई है। हमारे फिल्म क्रिटिक आने बैनर्जी ने दोनों फिल्में देखी हैं। तो अब दोनों फिल्मों के बारे में मुख्तसर बात करते हैं। पहले ट्रैप पर बात कर लें।
ट्रैप एक बहुत अनोखी फिल्म है
क्योंकि इसकी कहानी बहुत अनोखी है। एक लड़का जो फंस जाता है एक बड़ी बिल्डिंग में जो अनइनहैबिटेड है और बुरी तरह फंस जाता है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब किसी न किसी समय ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन शायद इतना नहीं हम झेल पाते जितना कि इस फिल्म में मेन किरदार जो राजकुमार राव ने किया है वो दिखाया जाए।
मशीन में अब्बास के बेटे मुस्तफा थे, तो ये फिल्म कैसी रही?
अब्बास मस्ताना ने बहुत अच्छी अच्छी थ्रिलर दी है, एक्शन पैक थ्रिलर। हमें शाहरुख खान की बाजीगर दी है उन्होंने, और उसके बाद भी उन्होंने हमराज दिए, इसमें अक्षय खन्ना का बहुत खूबसूरत रोल था। यहाँ पे उन्होंने सोचा होगा शायद मेरा जो पुराना फॉर्मूला है वो दोबारा काम कर जाएगा।
स्टूपिड,
मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता।
अब्बास मस्तान अब्बास का ही शायद बेटा है जिसने यहाँ हीरो का काम किया है, और उन्होंने दोबारा से बाजीगर को रिहैश करके पेश किया है। जरूरी नहीं है जो शाहरुख खान के साथ थी बात या काजोल और शिल्पा शेट्टी के साथ थी बात वो दोबारा काम कर जाए।
इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सको।
कितना प्यार करते हो तुम मुझे?
प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।